पृष्ठ संख्या 64, सामाजिक न्याय और भारतीय संविधान, वीरेंद्र कुमार, शोध छात्र, यूजीसी, हॉस्टल नंबर 3, कमरा संख्या G13, रांची कैंपस, मोराबादी, रांची 8। विश्व के इतिहास में मानव सभ्यता एवं विकास, प्रकृति तथा नैसर्गिक परंपरा, संस्कृति, वातावरण, विचार, अभिव्यक्ति, विज्ञान, तकनीकी एवं वर्तमान घटनाओं का ऐसा सम्मिश्रण है जो ईश्वर की नवावकृति है। वर्तमान के वैश्वीकरण एवं आधुनिकता के दौर में विश्वग्राम की अवधारणा प्रचलित होती जा रही है, वहीं विश्व बंधुत्व की भावना को भी प्रबल किया जा रहा है। भारतीय दर्शन में वसुधैव कुटुंबकम विश्व प्रचलित है। विश्व में सामाजिक न्याय की अवधारणा का अर्थ है समाज के सभी वर्गों में समानता एवं चौहमुखी विकास। रूसो के अनुसार मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र होता है पर सर्वथा वेड़ियों में जकड़ा रहता है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय की अवधारणा मानवता के इतिहास में जुड़ी हुई है। भारतीय मनुष्यों का विचारकों ने अपने चिंतन के आरंभ से ही हमेशा मनुष्य की अस्मिता को केंद्रीय परिधि में रखते हुए उसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यहाँ पर मनुष्यता या मानव कार्य को सबसे श्रेष्ठ या ऊंचा धर्म बताया गया है। इसी प्रकार महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास ने इस प्रकार कहा है, ना मानुषता परतरम किंचिदस्ति, अर्थात मनुष्यता से परे या ऊंचा कोई दूसरा धर्म नहीं है। मानव समाज में सामाजिक न्याय की अवधारणा मानव हित के लिए सर्वोपरि तथा सदियों की शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। सामाजिक न्याय का अभिप्राय है मानव मानव के बीच में जाति, वर्ग, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, संस्कृति, धर्म, समुदाय, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को विकास का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। न्याय वह गुण है जिसके प्रयोग से हमारा सद्गुणात्मक चरित्र निखरता है। जॉन रॉल्स के अनुसार सामाजिक न्याय इस अवधारणा पर आधारित है कि समाज को तभी समतावादी माना जा सकता है जब वह समानता और एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित हो और वहीं मानवाधिकारों का सम्मान तथा प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा की जाती हो। सामाजिक न्याय की अवधारणा में समाज एवं न्याय दो शब्दों का एक व्यवहारिक एवं तार्किक योग है जो दोनों को एक दूसरे के अस्तित्व के प्रति सार्थक है। सर्व समाज की कल्पना में मानव का अस्तित्व नजर आता है। समाज के लिए व्यक्तियों के बीच एक ऐसी गतिविधियों की मान्यता है जो वातावरण, समय व परिस्थितियों के अनुसार अनवरत नियमों एवं मानकों में प्रचलित है। मैकाइवर एवं पेज के शब्दों में समाज का आधार रीतियां, समूहों, उनका विभाजन, मानव व्यवहार के नियंत्रण, स्वतंत्रताएं और व्यवस्थाएं हैं। इन्हीं आधारों पर मनुष्य एक दूसरे से संबंध स्थापित करता है। संबंधों के इन्हीं ताने बाने को मैकाइवर तथा पेज ने समाज कहा है। सामाजिक न्याय और समाज में दर्शन की एक प्रगतिशील संकल्पना है जिसका मूल मंत्र यह है कि संगठित सामाजिक जीवन से जो भी लाभ प्राप्त होते हैं वे गिने चुने लोगों के हाथों में सिमट कर ना रह जाएं, बल्कि सर्वसाधारण को, विशेषतः निर्बल और निर्धन वर्गों को उनमें समुचित हिस्सा मिले ताकि वे सामान्यतः सुखी, सम्मानित और निश्चित जीवन शैली से जीवन यापन कर सकें। इसके अलावा आय व संपत्ति का सीधा संबंध श्रम और कर्तव्य पालन से हो, विशेषाधिकार परंपरा या उत्तराधिकार से नहीं। न्याय राज्य और समाज की मूलभूत विशेषता है। समाज एवं राज्य की स्थापना के बाद न्याय का ही प्रश्न उठा। प्रारंभ में जब राज्य एक प्रहरी के रूप में काम करता था तब भी न्याय वितरण राज्य का सर्वप्रथम दायित्व था। न्याय राज्य या सरकार का सर्वोपरि मूल उद्देश्य है। न्याय का तात्पर्य प्रक्रिया भी है और परिणाम भी, पर अपने दोनों ही अर्थों में यह उपयुक्तता की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। उपयुक्तता से अभिप्राय इस बात से है कि जो भी निर्णय हो रहा है और जिस ढंग से हो रहा है वह व्यक्ति और परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया जाए और उनमें किसी भी तरह का पक्षपात नहीं हो। एक आदर्श स्थिति में समाज में प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व बिना किसी भेदभाव के स्वीकार्य हो तथा जीवन में सभी सहूलियतें उसे सम्मानित व्यक्ति के रूप में पाने का अधिकार हो, न कि उसकी सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य कारणों की वजह से। साथ ही उसे अपना स्थान अपनी योग्यता के अनुसार हासिल करने के सभी अधिकार प्राप्त हों तथा उनके अधिकारों, अस्तित्व एवं आकांक्षाओं का समान रूप से आदर भी किया जाए। इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति के मानव अधिकार सर्वोपरि हों। मनुष्य जाति की सदस्यता के फलस्वरूप जो उसे प्राप्त है उसका सभी के द्वारा आदर एवं सम्मान किया जाए। इसी को हम आदर्श सामाजिक न्याय की स्थिति कह सकते हैं। प्रश्न उठता है कि इस मार्ग में बाधा क्या है। इस प्रश्न का उत्तर हमें दुखी और शर्मसार करने वाला है, क्योंकि दोषी कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। मानव अधिकार एवं गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम मनुष्य और उसके द्वारा तैयार की गई व्यवस्थाओं और संस्थाएं ही कर रही हैं। पृष्ठ संख्या 66। न्याय को परिभाषित करने वाले विद्वानों ने थ्रेसिमैक्स ने न्याय को तथ्यपरक बताया, वहीं प्लेटो ने अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों को करने तथा दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करने को ही न्याय कहा है। प्लेटो के मतानुसार न्याय व्यक्ति के मूल में है। प्लेटो के अनुसार न्याय में आनंद है, क्योंकि उसके द्वारा उत्तम जीवन का निर्माण होता है। अतः न्याय का महत्व समाज तथा राज्य दोनों के अंतर्गत है, अर्थात न्याय की अवधारणा इस पर निर्भर करती है कि नैतिक मूल्यों के अनुरूप लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। न्याय लोगों की स्वतंत्रता, अधिकार, समानता और उसके कानूनी अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षण प्रदान करता है। अरस्तु ने न्याय के अनेक प्रकार बतलाए हैं, उन्हीं में से एक वितरणात्मक न्याय है। वितरणात्मक न्याय का संबंध समान धन संपदा के वितरण से है। इस सिद्धांत के अनुसार समाज लोगों के साथ समान बर्ताव होना चाहिए। समान एवं असमान के निर्धारण हेतु अरस्तु का मानना है कि प्रचलित कानून एवं प्रथाओं का सहारा लेना चाहिए। अरस्तु का मानना था कि पद प्रतिष्ठा एवं धन संपदा का वितरण अंक गणितीय रूप में न होकर ज्यामितीय अनुपात में होना चाहिए। इसका आशय है कि सबको बराबर मात्रा में वितरण न करके प्रत्येक को उसकी योग्यता अनुरूप आवंटन किया जाना चाहिए। मार्क्स भी न्याय की अवधारणा में धन की समानता का वितरणात्मक आधार से समर्थक थे। बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी न्याय के लिए जातिगत वितरणात्मक न्याय की अवधारणा पर बल दिया और नैतिकता की मूल्यों को सही बताते हुए मानवीय धर्म के आधार पर समानता की बात कही। परंपरागत रूप में न्याय की धारणा रही है नैतिक और कानूनी, लेकिन आज की स्थिति में न्याय ने बहुत अधिक व्यापक स्थिति प्राप्त कर ली है। आज कानूनी न्याय की अपेक्षा भी सामाजिक न्याय अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय की अवधारणा का संघर्ष सदियों पुराना है। भारत में इतिहास के आरंभ से वर्तमान की आधुनिकता तक सामाजिक विषमता व्याप्त रहा है, जो भारतीय एकता एवं अखंडता के लिए अभिशाप है। भारतीय समाज सदियों तक सामाजिक न्याय की व्यवस्था बनाने में कभी राजतंत्र, सामंत तंत्र, निरंकुश तंत्र, मुगलों एवं अंग्रेजी गुलामों में कमजोर प्रतीत होता रहा है। इसके शासन व्यवस्था में समाज के अनेक घटकों के निर्माण ने सामाजिक न्याय की अवधारणा ही नहीं बनने दी है। संविधान किसी भूभाग या किसी भी राज्य का वह सर्वोच्च दस्तावेज है जिसमें सरकार के अंग, व्यवस्था एवं नीतियां एवं नियमों का वर्णन होता है। इसके साथ ही संविधान के आलोक में ही किसी भी देश की मानवीय संरक्षण, विकास एवं मूल्यों की रक्षा का उचित प्रावधान संभव होता है। भारत का संविधान इन्हीं उद्देश्यों से निर्मित है। स्वतंत्रता पूर्व के भारतीयों के अनुभवों के कारण ही संविधान के निर्माण का सार्थक दस्तावेज भारत का संविधान परिस्थितियों के अनुकूल प्रभावकारी जान पड़ता है। भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। लोकतंत्र में सामाजिक सद्भाव और न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि मानव अधिकार विषयक प्रावधान व चिंतन सभी के लिए सुलभ हों और उसकी भाषाओं में हों। भारत में लोकतंत्र की रक्षा और लोक कल्याण हेतु मानव अधिकारों की स्थापना का अपना अलग ही महत्व है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्र भारत में सामाजिक न्याय को बुनियादी जरूरत माना है। इसमें अंबेडकर, गांधी जी, नेहरू आदि सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक थे। भारतीय संविधान के अंगीकार हो जाने के बाद भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्र भारत में सामाजिक न्याय को बुनियादी जरूरत माना। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय, विचार समानता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, पंथ निरपेक्षता, उपासना, अवसर की समता, अधिकार एवं कर्तव्यों का प्रावधान संविधान की विशेषताओं को परिलक्षित करता है। संविधान का निर्माण एवं उसके लागू होने से पूर्व ही सामाजिक न्याय के संबंध में 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, 26 जनवरी 1950 को हम एक अंतर विरोध से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ राजनीति में बराबरी होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में विषमता रहेगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक व आर्थिक ढांचे के तर्क से एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को नकारने की प्रक्रिया जारी रखेंगे। आखिर हम कब तक अपने सामाजिक व आर्थिक जीवन में समता को नकारते रहेंगे? अगर हम ज़्यादा समय तक उसे नकारते रहते हैं तो अपने राजनीतिक जनतंत्र को खतरे में डालकर ही ऐसा कर रहे होंगे। हमें इस अंतर विरोध को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा, वरना जो लोग असमानता की मार झेल रहे होंगे वे राजनीतिक जनतंत्र के उस ताने बाने को तार तार कर देंगे जिसे इस सभा ने इतने श्रम से खड़ा किया है। अंबेडकर ने जिस खतरे की बात भारत के समक्ष रखी थी उस प्रकार के खतरे आज दुनिया में प्रकट हो रहे हैं। भारत में भी इसके विभिन्न स्वरूप दिखाई दे रहे हैं जिसमें नस्लवाद या माओवाद को शामिल किया जा सकता है। आखिर इन बातों को अनदेखी क्यों की गई? शायद सभी व्यक्ति स्वहित लाभ के उद्देश्यों को पूरा करने में लगे हुए हैं। सामाजिक अवधारणा मृत प्राय हो गई है। भारतीय संविधान के लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कमजोर होती जा रही है। भौतिकतावादी एवं पाश्चात्य संस्कृति के कारण भारत की संवैधानिक अवधारणा दस्तावेजी बनकर रह गई है। वर्तमान की देशीय गतिविधियां गांधी जी के स्वराज्य, राम राज्य एवं ट्रस्टीशिप से अलग नजर आती है। अंबेडकर के एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत का अंत होता नजर आ रहा है। संविधान जो अतीत का उत्तराधिकारी होता है और भविष्य का वसीयत करता, भारतीय संविधान पर उतना ही लागू होता है जितना अन्य पर। भारतीय संविधान ने न केवल मूल अधिकारों की व्यवस्था की अपितु उसके परिवर्तन का भी उपाय किया है। इस तरह भारतीय संविधान के भाग 3 में न केवल सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार की बात कही गई बल्कि नागरिक और राजनैतिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार भी किया गया है, अपितु उसके उल्लंघन की स्थिति में उपचार की व्यवस्था की गई है और उस कहावत को चरितार्थ करने का प्रयत्न किया गया है जो कहता है, जहां अधिकार है वहीं उपचार है। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की अवधारणा संविधान के अंतर्गत भाग 3 में मूल अधिकारों के समावेश के पीछे की एक पृष्ठभूमि है। यह अपने आप में ही इसमें सम्मिलित नहीं हो गए हैं। भारत की संविधान सभा जो भारत के लिए संविधान के निर्माण का कार्य कर रही थी में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयोजन संकल्प प्रस्तुतीकरण के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। इस संकल्प में बिंदु 5 में कहा गया है कि भारत के सभी लोगों के लिए गारंटी किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय सुलभ हो सकें, उनके बीच प्रायश्चित की, अवसर की और विधि के समक्ष समता की स्थिति हो, उन्हें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, पूजा, व्यवसाय, संगम और कार्य की स्वतंत्रता हो, परंतु यह सब विधि और सार्वजनिक नैतिकता के अधीन होगा। प्रयोजन संकल्प के प्रावधान और मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को अंगीकार किया, इसमें दोनों प्रकार के अधिकारों, नागरिक और सामाजिक और राजनीतिक अधिकार तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का विस्तृत समावेश है। इसने भारत के संविधान में मूल अधिकारों की घोषणा को भी प्रभावित किया। मूल अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के प्रावधानों के अनुरूप हैं। भारत ने जब से वैश्वीकरण और उदारीकरण को अंगीकार किया है, तब से उसकी प्रगति के बखान की अनवरत श्रृंखला जारी है। इसकी पुष्टि फोर्ब्स की सूची में दर्ज अमीर की तेजी से बढ़ती हुई संख्या तथा 5 में 10 करोड़ प्रतिमाह वेतन पाने वाले मेधावियों की उपस्थिति से होती है, लेकिन यह तरक्की उतनी सपाट नहीं है जितना कि बताया जा रहा है, बल्कि यह बहुत से अंतर विरोधों से भरा है। इसलिए सबसे अहम सवाल यह उठता है कि क्या यह तरक्की दुनिया को सामाजिक न्याय मुहैया कराने में समर्थ है? क्या इसने उस व्यक्ति के लिए स्वराज का सही अर्थ प्रस्तुत किया है जिसकी बात गांधी जी किया करते थे? भारतीय संविधान ने अपने भाग 4 में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की आयरिश संविधान को अपनाया। आय, अवसर और हैसियत की असमानता का निराकरण और न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था संविधान के भाग 4 की दार्शनिक आधारशिला है। आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर भारतीय संविधान न केवल एक लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण की परिकल्पना करता है, अपितु मानवाधिकार की संकल्पना के एक विकसित स्थिति का परिचायक भी है। बालकाल और किशोरावस्था के संरक्षण के अधिकार को प्रवर्तनीय अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। जहां भारतीय संविधान अंतर्राष्ट्रीय विधि, बेरोजगारी, वृद्धावस्था और बीमारी की स्थिति में लोक सहायता का प्रावधान करता है, वहीं यह इसे विस्तृत करके बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता के साथ अन्य अनहर अभाव की दशाओं तक ले जाता है। जहां मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 23(3) न्यायोचित और अनुकूलन पारिश्रमिक की बात करता है, वहीं भारतीय संविधान कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात करता है। भारत के संविधान निर्माताओं ने यह महसूस किया कि भाग 4 के अधिकारों को तब तक नहीं सुनिश्चित किया जा सकता जब तक कि संपदा का बंटवारा न हो। असमानताओं को कम करना संपदा के नियंत्रण और विभाजन की मांग करता है। यह स्वामित्व का न्यायोचित वितरण, भौतिक संसाधनों का नियंत्रण और संपदा तथा उत्पादन के साधनों के केंद्रीकरण को रोकना भारतीय संविधान की अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों पर एक महत्वपूर्ण प्रगति है। इन चीजों के बिना अनुच्छेद 38 में परिकल्पित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान में महिला और सामाजिक न्याय की स्थिति का आकलन करने से पता चलता है कि किसी भी समाज या देश के विकास के लिए सामाजिक न्याय एक अनिवार्य एवं बुनियादी जरूरत है। सामाजिक न्याय मानवाधिकारों एवं समानता के सिद्धांतों पर आधारित है, जो समाज के सभी वर्गों को समान जीवन अवसर प्रदान करता है। महिलाएं प्रत्येक समाज एवं देश का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। प्राचीन काल से ही स्त्रियों की काफ़ी स्थिति मजबूत होती जा रही है। आज आधुनिक दौर में भी महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, पर बदलती स्थितियों में महिलाओं पर अत्याचार एवं हमलाएं चिंता के कारण बन गए हैं। अंततः भारतीय संविधान एवं कानूनों में संशोधन आवश्यक प्रतीत होता है। इसके अलावे महिलाओं के लिए भी सामाजिक परंपराओं एवं सामाजिक मूल्यों में आस्था आवश्यक जान पड़ती है। भारतीय संविधान ने अनेक अधिनियम जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, विशेष विवाह अधिनियम 1961, हिंदू उत्तराधिकार कानून अधिनियम 1956, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 इत्यादि बनाकर महिलाओं को सामाजिक न्याय की शक्ति प्रदान करने का सार्थक प्रयास किया है। अतः स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान के निर्माणकर्ताओं ने स्वतंत्र भारत में सामाजिक न्याय को बुनियादी जरूरत माना। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का उद्देश्य राजनीतिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र के साथ सामाजिक न्याय की स्थापना करना भी है। संविधान में सामाजिक न्याय की भूमिका आम आदमी के लिए यह है कि जनता ही राज्य का बल है और जनता किसी भी कानून से अधिक बलशाली है। भारतीय संविधान के निर्माणकर्ताओं में अंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू इत्यादि सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक थे। संविधान के अंगीकार हो जाने के बाद भारतीय संविधान सामाजिक न्याय का एक दस्तावेज बन गया। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की परिकल्पना में समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने का आश्वासन दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को मानवीय एवं चहुंमुखी विकास करने के लिए मौलिक अधिकार की शक्ति प्रदान की गई है, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मानवीय हितों एवं सामाजिक न्याय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली हैं। संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 में सामाजिक न्याय को मुख्यतः 4 वर्गों में स्पष्ट किया गया है। आर्थिक समानता संबंधी सामाजिक न्याय, सामाजिक स्तर पर सामाजिक न्याय, राजकीय स्तर पर सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय। आर्थिक स्तर पर सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय के संदर्भ में आर्थिक समानता इसलिए आवश्यक है क्योंकि बगैर आर्थिक क्षेत्र को सुदृढ़ किए सामाजिक क्षेत्र में विकास संभव नहीं है। भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 3, 41, 42, 43, 46, 47 और 48 में ऐसे सिद्धांतों का निर्देश दिया है जिनके द्वारा नागरिकों की आर्थिक आवश्यकता पूरी होगी और उनका शोषण होना बंद होगा। कहने का तात्पर्य है कि राज्य के सभी नागरिकों को जीविका के साधन प्राप्त करने का समान अधिकार है, अर्थात भुखमरी को रोकने की चेष्टा इस तरह की गई है कि समस्त मानव के साथ सामाजिक न्याय स्थापित हो सके, न कि देश की संपत्ति कुछ ही पूंजीपतियों के हाथों में केंद्रित हो। समाज की आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि देश धन और उत्पादन के साधनों का अहितकर केंद्रीकरण न होकर सर्वसाधारण का कल्याण हो, पुरुषों तथा स्त्रियों को समान कार्यों के लिए समान वेतन मिलने का निर्देश सामाजिक न्याय की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। बालकों एवं नवयुवकों के शोषण और अनैतिकता से रक्षा के साथ राज्य ग्राम पंचायतों का समुचित संगठन और अपने आर्थिक सामर्थ्य तथा विकास की सीमाओं के अंतर्गत यह व्यवस्था करना है कि सभी व्यक्ति योग्यता अनुसार कार्य व शिक्षा प्राप्त कर सकें, सामाजिक न्याय को सुदृढ़ पक्ष को प्रदर्शित करता है। पृष्ठ संख्या 72। हालांकि सामाजिक न्याय की स्थापना का सारा भार राज्य के जिम्मे है, अतः राज्य को संविधान द्वारा ऐसी व्यवस्था करने की व्याख्या की गई है जिससे नागरिकों को मानवोचित रूप से कार्य करने, अवकाश काल का पूर्ण उपयोग करने और सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास करने का सुअवसर प्राप्त हो। राज्य ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित कर ग्रामों को आर्थिक दशा में सुधारा लग जाए। राज्य कृषि, पशुपालन आदि के क्षेत्रों में आधुनिक तथा वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग कर उनकी दशा को सुधारने का प्रयास कर तथा दूध देने वाले पशुओं के वध से रक्षा करके। नंबर 1, सामाजिक स्तर पर सामाजिक न्याय। समाज समस्त देश के नागरिकों के लिए एक व्यवहार संहिता बनाने का प्रयत्न करे ताकि समस्त देश में एक ही वैयक्तिक कानून हो जिसका आधार धर्म ना रहे। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर राज्य निष्पक्ष सामाजिक न्याय की समुचित व्यवस्था करे। 14 वर्ष तक की आयु के बालकों और बालिकाओं के लिए निःशुल्क तथा अर्थ संबंधी हितों की रक्षा करे। वह जनता के दुर्बलतर वर्गों, अछूतों एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था करे एवं उनके अर्थ संबंधी हितों की रक्षा की व्यवस्था विशेष सावधानी से करे ताकि वे उन्नति के पथ पर अग्रसर हों तथा सामाजिक अन्याय एवं आर्थिक शोषण से वे अपनी रक्षा कर सकें। इसके द्वारा सामाजिक न्याय के विस्तारीकरण को प्रोत्साहन भी दिया जाने चाहिए। राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि नागरिकों का स्वास्थ्य सुधार हो, वह अपना कर्तव्य समझे कि लोगों का आहार पुष्टिकारक और जीवन स्तर सामाजिक न्याय के तहत ऊंचा हो। इस उद्देश्य से राज्य हानिकारक मादक पेयों तथा मादक वस्तुओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाए और ऐसा प्रबंध करे कि केवल चिकित्सा के उद्देश्य से उसका उपयोग हो। राज्य का यह दायित्व या कर्तव्य होगा कि वह उस ऐतिहासिक अथवा कलात्मक महत्व के प्रत्येक स्मारक या वस्तु जिसे संसद राष्ट्रीय महत्व का घोषित करे कि रक्षा दूषित होने, स्थानांतरित किए जाने या बाहर भेजे जाने से करे। नंबर दो, राजकीय स्तर पर सामाजिक न्याय। देश के प्रशासन में जिन सिद्धांतों का अनुसरण किया जाए उनके संबंध में कतिपय विचारों का प्रतिपादन किया गया है जिन्हें प्रमुख है। नंबर एक, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। नंबर दो, ग्राम पंचायतों का संगठन आदि। इनका उद्देश्य क्रमशः निष्पक्ष न्याय की प्राप्ति एवं रचनात्मक कार्यों द्वारा ग्राम सुधार करना एवं सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना है। नंबर तीन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय। इस वर्ग ने ऐसे सिद्धांत हैं जिनका उद्देश्य विश्व शांति, मानव कल्याण तथा विश्व स्तर पर सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। महात्मा गांधी विश्व शांति एवं सामाजिक न्याय को अपने जीवन का लक्ष्य मानते थे। उनके विचारों से प्रभावित होकर संविधान निर्माताओं ने अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा नैतिकता को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से संविधान में निम्नलिखित उपबंध किए हैं। संविधान में कहा गया है कि राज्य विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक न्याय तथा सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करने की चेष्टा करे और अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों को मध्यस्थता द्वारा हल करने का प्रयत्न करें। अर्थात संविधान के तहत राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिसे देश में कानून प्रणाली द्वारा समान अवसर के आधार पर सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन और विशेषकर उपयुक्त विधायन या परियोजना द्वारा कानूनी सहायता मिले जिससे आर्थिक दृष्टि से अक्षम या किसी अन्य अयोग्यता के कारण कोई व्यक्ति न्याय पाने से वंचित न हो सके। पृष्ठ संख्या 73। अंततः कहा जा सकता है कि मानव समाज के लिए सामाजिक न्याय के तीन प्रमुख लक्ष्य रहे हैं जिनमें प्रत्येक को अपने जीवन अस्तित्व को बनाए रखना, जीवन का भरण पोषण तथा जीवन की सुरक्षा, जीवित रहने के लिए पर्यावरण की सुरक्षा तथा स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण प्राप्त हो सके। मौलिक अधिकार के उद्देश्य की पूर्ति तो संविधान के आलोक में भारतीय नागरिकों को प्रदत्त हो जा रही है, लेकिन यह सबसे बड़ी विडंबना है कि सामाजिक न्याय को राज्य के जिन नीति निर्देशक तत्वों के तहत वर्णित किया गया है उन्हें लोकतंत्र की मजबूत आधारशिला में आज भी कमजोर देखा जा रहा है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कमजोर पड़ती जा रही है, अतः सामाजिक न्याय को संविधान सम्मत वातावरण में विकसित करने हेतु आवश्यक है कि इससे संबंधित विसंगतियों को प्रत्येक संभावित स्तर पर सुधार किया जाना चाहिए। भारत में सामाजिक न्याय के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं। नंबर एक, भारतीय संविधान के प्रावधानों को मानव हितों में सामाजिक न्याय के लिए शक्ति से लागू करना चाहिए। नंबर दो, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी में स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर भागीदारी होनी चाहिए। नंबर तीन, भारतीय नागरिकों को अधिकारों से ज़्यादा कर्तव्य के प्रति अग्रसर होना चाहिए। नंबर चार, संविधान के भाग चार को मानवीय एवं कल्याणकारी रूप में धरातलीय आधार पर लाना जरूरी है। पृष्ठ संख्या 74। भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक न्याय के प्रबंध के लिए स्थापित संस्थाओं में भागीदारी एवं वास्तविक लोकतंत्र समावेशन तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देना चाहिए। नंबर छः, धनी देशों को चाहिए कि वे सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु गरीब देशों को ऋण में छूट, विकासशील देशों के निर्यातकों के लिए अपने बाजारों को खोलना, रोगों की रोकथाम के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण में सहायता, ऊर्जा दक्षता में वृद्धि तथा कृषि उत्पादन को सहारा देने जैसे आवश्यक कदम उठाएं। नंबर 7, नागरिक सामुदायिक संगठन भी इस दिशा में बेहतर योगदान कर सकते हैं। यह संगठन विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए आवाज़ उठा सकते हैं तथा सार्वजनिक, निजी या गैर सरकारी निष्पादन के लिए स्वतंत्र सत्यापन का भी कार्य कर सकते हैं। नंबर 8, अपने दैनिक संचालन में सततता के प्रति प्रतिबद्धता के द्वारा निजी कंपनियां भी योगदान कर सकती हैं, साथ ही वे निजी कंपनियां भी पर्यावरणीय एवं सामाजिक लक्ष्यों को अग्रगामी बनाकर अपने हितों को भी बढ़ावा दे सकती हैं। नंबर 9, सामाजिक न्याय के लिए मानवीय भावना प्राकृतिक रूप से मानवीय आत्मा में हो, विचारों में हो और भौतिकता से परे हो। नंबर 10, राष्ट्र विकास में सामाजिक न्याय की अवधारणा का पालन आवश्यक होना चाहिए। संदर्भ: आशा कौशिक 2002, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल जस्टिस, पॉइंटर पब्लिकेशन। एम महाराजन 2001, सोशल जस्टिस इन इंडिया, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, न्यू दिल्ली। एस सी सिंघल 2004, भारतीय शासन एवं राजनीति, एल एन अग्रवाल, आगरा। टी पी त्रिपाठी 2006, मानव अधिकार, इलाहाबाद ला पब्लिकेशन, इलाहाबाद।